मुझे सैन डिएगो में अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। मैं बजट में कटौती के कारण गोद लेने के क्षेत्र में काम करता था। उन्होंने हमारी कंपनी के लगभग 50% लोगों को नौकरी से निकाल दिया।
हमें इस बारे में बात करनी होगी कि क्या हो रहा है। अगले 35 सालों में वॉल स्ट्रीट का घाटा 200,000 से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आय आपकी फाइनेंस की नौकरी को बदल रहा है। तो अभी फाइनेंस की हालत बहुत खराब है, ठीक है। और वैश्विक बैंक 200,000 लोगों की छंटनी करने जा रहे हैं। यह कोई मेरी कोठरी से निकाला हुआ नंबर नहीं है, यह ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस सर्वे से आया है। वे CEO कंपनियों, CFO रिपोर्ट, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गति को देखते हैं और पाते हैं कि निकट भविष्य में बहुत सारे लोगों की छंटनी होने वाली है। अगले 10 सालों का क्या होगा? हो सकता है कि लाखों बैंकर और फाइनेंस प्रोफेशनल्स चले जाएं। और आप जानते हैं, अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि जॉब मार्केट बहुत खराब है। न केवल संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, बल्कि मेटा ने भी इस साल की शुरुआत में लगभग 4,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था और वे अभी भी छंटनी कर रहे हैं। HSBC ने अपने निवेश बैंक के 70% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जो एशिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, और मुझे लगता है कि वे हांगकांग के सबसे बड़े बैंक हैं। मुझे वाकई यकीन नहीं है, आप इस पर मुझसे तथ्य पूछ सकते हैं, लेकिन वे इसके लिए जाने जाते हैं। अगर आप चीन में व्यापार करना चाहते हैं तो अक्सर आपके पास HSBC खाता होना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग अभी तनाव में हैं। आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जो वित्त में पूर्णकालिक नौकरी खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस लड़के ने लगभग एक महीने पहले ही वित्त में BBA के साथ कॉलेज से स्नातक किया है। स्कूल में यह बहुत अच्छा है, वास्तव में अच्छा GPA है, मुझसे कहीं बेहतर है। सचमुच हर नौकरी के लिए 3 साल से अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है, यहां तक कि वे भी जो प्रवेश स्तर के लिए कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारी आउटसोर्सिंग कंपनियां अपने काम को दूसरे देशों में आउटसोर्स कर रही हैं। तो कॉलेज से स्नातक होने वाले नए लोगों को शुभकामनाएं। आपको नौकरी मिलने की संभावना न के बराबर है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे कई फाइनेंस वाले दोस्तों को अभी नौकरी से निकाला जा रहा है, यह अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं आपको इनमें से कुछ वीडियो दिखाता हूं, और दिखाने से पहले निजी डिस्कॉर्ड सर्वर पर नजर डालिए। हम हर दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम हर दिन कुछ $100 कमा रहे हैं, और यह सिर्फ $10 प्रति महीना है। इससे देखिए,
क्या कोई मुझे समझा सकता है कि मेरे पास 4 डिग्री हैं और फिर भी मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? कम्युनिकेशन में BA, स्पेनिश में BA, डांस में BFA, इसके लिए तैयार हो जाए। पत्रकारिता में मास्टर डिग्री। ध्यान रहे, मुझे 2 साल के अंदर एक या दो बार नहीं बल्कि 3 बार नौकरी से निकाला जा चुका है। तो अगर आप पीछे महसूस कर रहे हैं तो जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। असल में हम सब पक्के हैं। मुझे 5 मिनट में नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे 57 मिनट में दूसरा इंटरव्यू देना है। मैंने अभी अभी अपना तीसरा इंटरव्यू खत्म किया है। सोचिए किसके पास नौकरी नहीं है, उन्होंने मुझे बस ना कह दिया। मुझे लगता है कि हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि अब कॉलेज से बिना नौकरी के स्नातक होना उतना शर्मनाक नहीं रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शर्मनाक क्या है? यह है कि स्नातक होने के बाद भी आपके पास नौकरी के लिए मौजूदा सीनियर्स के लिए रिटर्न ऑफर और फुल टाइम जॉब्स हैं। हम संभावित कॉलेज छात्रों से लेकर बेरोजगार नए ग्रेजुएट्स तक के बारे में पर्याप्त बात नहीं कर रहे हैं, जिनके पास बहुत सारे शौक हैं। मुझे लगभग 3 हफ्ते पहले मेरी तकनीकी नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि पुनर्गठन के कारण, या ऐसा कहा जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा पेज उसके बारे में हो। हालांकि मजे के लिए मैं लिंक्डइन देख रहा था और एक बहुत ही प्रमुख तकनीकी कंपनी में एक नौकरी थी जो केवल एक उत्पाद प्रबंधक को काम पर रख रही थी। ध्यान रहे, मैं कुछ समय से उत्पाद प्रबंधक हूं और मैं लगभग 1 दशक से इस उद्योग में हूं। और हर कंपनी अलग होती है कि वे अपनी नौकरियों का ढांचा कैसे बनाते हैं, उनके पद कैसे होते हैं, उनका पदानुक्रम कैसा होता है। हर कंपनी चीजों को थोड़ा अलग तरीके से करती है। हालांकि यह प्रोडक्ट मैनेजर की नौकरी थी जिसे आपने पढ़ा और आपने कहा हाँ 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 समझ गया, और फिर आपने कहा 10 साल से ज्यादा का अनुभव। और यह मुझे हंसाता है, क्योंकि मेरी कंपनी में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया था, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, जिनके पास 2 साल से भी कम का अनुभव था। यह बहुत अजीब है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि लिंक्डइन पर हर मिनट 11,000 जॉब एप्लीकेशन आते हैं, जो कि हर दिन लगभग 15 मिलियन जॉब एप्लीकेशन होते हैं। यही कारण है कि आपकी जॉब सर्च में उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है या आपको बार बार घोस्ट कर दिया जा रहा है। वास्तव में इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसका सब कुछ उन एप्लीकेशन की भारी संख्या से लेना देना है जो अभी बाजार में आ रही हैं। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन पास हो जाए, तो मुझे आपसे 3 काम करने होंगे। नंबर 1, आपको हर बार जॉब के लिए अप्लाई करने पर फॉलो अप करना होगा। 90% लोग ऐसा नहीं करते हैं, यही कारण है कि उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप संगठन में किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो आपके आवेदन को चिन्हित कर सके। याद रखिए कि जिस सिस्टम में आपका रिज्यूमे जाता है वह बहुत बड़ा ब्लैक होल है, और जब तक किसी को पता नहीं चलता कि आपका आवेदन वहां है, वे इसे कभी नहीं देख पाएंगे। जो मुझे नियम नंबर 2 पर ले जाता है। आपको रेफरल की तलाश करनी होगी। मैं अभी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी नहीं करूंगा। मैं औपचारिकता के तौर पर आवेदन करूंगा। मैं हर उस कंपनी में लोगों की तलाश करूंगा जहां मैं आवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि फिर से आपको किसी न किसी तरह के मानवीय संपर्क की आवश्यकता होती है। आई और ATS यही वह सिस्टम है जहां आपका रिज्यूमे जाता है, वे आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। और फिर आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात नंबर 3, आपका रिज्यूमे शानदार होना चाहिए। यह बहुत मजबूत होना चाहिए। एक त्वरित काम जो आप कर सकते हैं वह है किसी ऐसी नौकरी के विवरण का क्रॉस रेफरेंस लेना जिसके लिए आप आवेदन करने की योजना बना रहे हैं। आप ChatGPT से पूछ सकते हैं या आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से आप उन सभी योग्यताओं को देखना चाहते हैं जो वहां सूचीबद्ध हैं। वे सभी आवश्यक कौशल जो आपको चाहिए वे कीवर्ड। सुनिश्चित करें कि आपके रिज्यूमे में ये मौजूद हो, क्योंकि जब VTS स्क्रीनिंग कर रहा होता है या कंपनी स्क्रीनिंग के लिए आई का इस्तेमाल कर रही होती है तो वे यही खोज रहे होते हैं। वे कीवर्ड खोज रहे होते हैं, और अगर आपके पास वे नहीं है तो आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। तो हाँ, अभी मार्केट थोड़ा पागल है, लेकिन जब तक आप मेरी बात मानते हैं तब तक आप टिके रह सकते हैं। क्या कोई और भी है जो नौकरी के लिए आवेदन करते समय ठीक यही अनुभव कर रहा है? इस हफ्ते एक नौकरी के लिए पोस्ट किया गया, 5 घंटे पहले पोस्ट किए गए 100 से ज्यादा आवेदकों ने आवेदन किया। ठीक है, यह पागलपन है। 1 घंटे पहले 100 से ज्यादा आवेदकों ने आवेदन किया। मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि LinkedIn और Indeed पर आवेदन करना बंद हो गया है। खैर, यह चालू है। आप बस हजारों लोगों के लिए आवेदन कर रहे होंगे। 2025 में मुझे लगता है कि मैं नेटवर्किंग, लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने, सार्थक संबंध बनाने और निजी जॉब बोर्ड को प्राथमिकता देने जा रहा हूं। अगर आप टोरंटो में हैं, तो मैं जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ने जा रहा हूं, उसका नाम तेरा है। अभी यह केवल शुरुआती साइन अप पर है। यह एक नेटवर्किंग ऐप है जो टोरंटो में आ रहा है, जहां हम वास्तविक समय में इवेंट देख पाएंगे और आप उन लोगों से मिल पाएंगे जिनकी रुचियां वास्तव में आपकी तरह हैं। लेकिन जिस बात को लेकर मैं सबसे ज्यादा उत्साहित हूं वह है प्राइवेट जॉब बोर्ड, क्योंकि मुझे इन बोर्ड पर मौजूद नौकरियों के लिए आवेदन करना होगा इससे पहले कि वे LinkedIn पर पहुंचे और वहां हजारों आवेदक हैं। क्या
किसी ने महसूस किया है कि जब आप बेरोजगार होते हैं या लंबे समय से नौकरी से बाहर होते हैं, तो जो लोग पहले किसी कारण से आपसे हर दूसरे दिन संपर्क करते थे, वे अब आपसे संपर्क नहीं करते हैं? और यह एहसास मेरे लिए बहुत डरावना था, क्योंकि मैं हर दूसरे महीने या हर दूसरे हफ्ते लोगों से मिलता था और फिर महीनों या यहां तक कि एक साल तक उनसे नहीं मिलता था। और मेरे मन में यह सवाल उठता था कि वे अब मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बेरोजगार हूं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहा हूं? या आप जानते हैं कि मेरे पास एक बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी है या कुछ और जो दूसरे लोगों को पसंद है, या मैं खुद को दूसरे लोगों के सामने कैसे देखता हूं? ईमानदारी से कहूं तो मुझे ये समझ नहीं आता। और फिर मेरे दिमाग में ये बात आई, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो पूर्णकालिक नौकरी करता हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे आर्थिक रूप से जिम्मेदार नहीं हैं या उनके साथ समय बिताने के लिए आर्थिक रूप से मौजूद नहीं है, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि मुझे याद है जब मेरे पास नौकरी थी और जब मेरे पास नौकरी नहीं थी, तो मेरे वित्तीय खर्च लगभग समान थे। जब मेरे पास नौकरी थी तब भी मैं उतना ही पैसा खर्च कर रहा था, तब भी जब मैं नौकरी नहीं कर रहा था। लेकिन जाहिर है जब आप बेरोजगार होते हैं तो आप बहुत सारे पैसे बचाते हैं, क्योंकि यात्रा, भोजन और अन्य चीजों पर खर्च कम हो जाता है। इसलिए आपके पास वास्तव में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने और उनके पैसे खर्च करने के लिए अधिक खाली समय होता है। लेकिन वे कभी कभी यह नहीं समझते हैं, जो वास्तव में बहुत परेशान करने वाला है। और मुझे बस कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें ये बताने की जरूरत है कि यार, मेरे पास वास्तव में पैसा है, मैं पैसे खर्च कर सकता हूं, क्योंकि मैं पैसे खर्च करता रहा हूं, व्यवसाय, बिल, अन्य चीजें, छुट्टियां। मेरा मतलब है कि मैं अभी भी साल में 3-4 बार छुट्टियां मनाने जाता हूं। मुझे पता है कि यह पागलपन लग रहा है, लेकिन मैं अभी भी अपने जीवन का आनंद लेना चाहता हूं, हालांकि अभी परिस्थितियां थोड़ी कठिन हैं और वे सुधर सकती हैं। मैं अपनी 20 की उम्र में हूं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं अपनी 20 की उम्र का सदुपयोग करूं। हां, अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो अब आपसे मिलना नहीं चाहते क्योंकि आपकी नौकरी की परिस्थितियां बदल गई हैं और वे अब आपसे संपर्क नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अलग होना बेहतर है। मुझे पता है कि यह बहुत कठोर लग रहा है, लेकिन वे शायद सोच रहे होंगे कि अगर आप बेरोजगार हैं और आप अभी भी कई महीनों या एक साल तक नौकरी की तलाश में हैं, तो यह निश्चित रूप से परेशानी के लायक नहीं है और दोस्ती को फिर से जगाने के लिए ऊर्जा भी नहीं है, जबकि दोस्ती आम तौर पर एक साथ जुड़ने, मौज मस्ती करने और यादें बनाने के लिए होनी चाहिए। और अगर आप अच्छी यादें नहीं बना पा रहे हैं तो फिर नौकरी ढूंढना क्या मतलब है?
दुनिया में नौकरी ढूंढना सबसे कठिन काम क्यों है? यह स्कूल से भी कठिन है, यह मेरे द्वारा किए गए किसी भी काम से कठिन है। मैं अभी कॉलेज से स्नातक हुआ हूं। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। हर कोई कहता है कि मुझे अनुभव की आवश्यकता है। ठीक है, अगर बिना अनुभव के आपको कोई नौकरी पर नहीं रखता है तो मैं अनुभव कैसे हासिल करूं? या फिर वो आपको अनुभव देना चाहते हैं, जैसे माफ करें कि मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, मैं मूल रूप से एक डिग्री हासिल कर रहा था जिसकी आपको जरूरत है। क्या वो फिर भी काफी नहीं थी? क्या मेरी डिग्री जिसके लिए मैंने 4 साल पढ़ाई की है वो काफी नहीं है? मैं बहुत उलझन में हूँ। ठीक है, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि अभी नौकरी पाना कितना मुश्किल है? मुझे लगभग एक महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन मैं आवेदन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे हाँ या ना या कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है। और मेरी इच्छा है कि लिंक्डइन या इंडीड के जरिए बड़े पैमाने पर आवेदन करने के बजाय कोई आसान तरीका होता, क्योंकि मुझे लगता है कि सैकड़ों हजारों आवेदक हैं और आपको उन कंपनियों से शायद ही कोई जवाब मिले जिनके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ हालात बहुत खराब हैं। मेरी नौकरी चली गई और अब मेरे पास बहुत समय है और मैंने सोचा कि मुझे उन लोगों के लिए डायरी लिखनी चाहिए जो इस नौकरी बाजार में बेरोजगार हैं और हम सब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो शुरुआत में कॉलेज से निकलने के बाद मेरी पहली नौकरी चली गई। मैं फाइनेंस में काम करता था। फाइनेंस में मूल वेतन बहुत कम होता है और साल के अंत में अच्छा खासा बोनस मिलता है। मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और मुझे उम्मीद थी कि यह मेरा सालाना बोनस होगा, लेकिन इसके बजाय मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। यह कोई झटका नहीं था क्योंकि मेरी टीम बहुत छोटी थी और सबसे पहले किसी और को नौकरी से निकाला गया जो लंबे समय से वहां था। मैं नया था और मुझे पता था कि अगला नंबर मेरा जाने का है, लेकिन मैंने अपनी पूरी सेवरेंस लगभग खत्म कर दी थी। अब लगभग 2 या 3 महीने हो गए हैं। यह नौकरी बाजार बहुत कठिन रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मेरे पास अपने शौक पूरे करने और अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए बहुत समय है। तो हाँ, बेरोजगार होने के कई फायदे और नुकसान हैं और शायद मैं इसे किसी दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा। मैंने जून महीने में 176 नौकरियों के लिए आवेदन किया है। मुझे पता है कि नौकरी बाजार को देखते हुए यह बच्चों का खेल है, लेकिन चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। मुझे इनमें से 50% नौकरियाँ लिंक्डइन पर मिली, 25% वेबसाइट वर्किंग नोमैड्स पर और बाकी 25% अलग अलग जॉब बोर्ड पर मिली। मैंने जिन 176 नौकरियों के लिए आवेदन किया, उनमें से 126 ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। उनमें से 26 ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, चले जाओ। हालांकि मुझे 24 इंटरव्यू मिले। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या देख रहा हूं, तो यह मेरी छोटी सी जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर वाली स्थिति है। बहुत प्यारी, आप इसे मेरे बायो में दिए लिंक पर पा सकते हैं। तो क्या मुझे अभी तक कोई नौकरी मिल गई है? नहीं। और जितना मैं यहाँ बैठकर इन सभी नौकरियों के बारे में सोचता हूँ जिनके लिए मैंने आवेदन किया है, उन इंटरव्यू की संख्या के बारे में और उन लोगों के बारे में जो मुझे नकार चुके हैं या मुझे नकार चुके हैं, मुझे लगता है कि नौकरी के बाजार में कदम रखते समय यह मेरी उम्मीद से ज्यादा आंकड़ों का खेल है। वैसे भी यह एक नए महीने की शुरुआत है। मैंने सोचा कि उन नौकरियों के बारे में संक्षेप में बताना मजेदार होगा जिनके लिए मैंने आवेदन किया है, और साथ ही यह एक तरह से यह याद दिलाने जैसा है कि यह आपकी गलती नहीं है, यह नौकरी का बाजार है। मैं एक अनुभवी भर्तीकर्ता हूँ, रिज्यूमे और नौकरी के आवेदनों का विशेषज्ञ हूँ और यह समझता हूँ कि नियोक्ता की तलाश के हिसाब से कैसे काम किया जाए, और यह मेरे लिए भी कठिन है। तो यह सिर्फ आपकी गलती नहीं है, इसे लेकर निराश मत होइए। हर कोई संघर्ष कर रहा है। यह नौकरी का बाजार बकवास है। कोई कभी इस बारे में बात नहीं करता कि स्नातक या स्नातकोत्तर के बाद नौकरी पाना कितना कठिन है ना? मैंने अभी मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और मेरे पास एक नौकरी है, लेकिन मैं बस अपने सिर को पानी से ऊपर रखना चाहता हूँ और मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं पता कि यह एक सार्वभौमिक चीज है या नहीं, लेकिन यह बहुत कठिन है। जैसे आपको वास्तव में इस बारे में रणनीतिक होना होगा कि आप क्या कर रहे हैं और आप इसे कैसे कर रहे हैं। मैं काम पर नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा हूं और फिर भी मुझे कॉल बैक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे मैं अपनी वर्तमान नौकरी में प्रतिदिन कम से कम 100 नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा हूं। तो हां, यह बहुत अधिक है। और फिर जैसे नौकरियां 5 साल 7 साल का अनुभव चाहती हैं। जैसे अगर आप मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं तो मैं अनुभव कैसे हासिल कर सकता हूं? और उसके ऊपर आप मुझे न्यूनतम वेतन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने 6 साल स्कूल क्यों गए? और आप जानते हैं कि यह समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं बस इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हाँ।
तो मुझे नौकरी से निकाले हुए लगभग 10 महीने हो गए हैं और इस दौरान मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है। एक बात तो पक्की है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी, चाहे नरक ही क्यों न जम जाए, 9 से 5 की नौकरी नहीं करूंगा। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं कारोबार खड़ा करना चाहता हूं और अपने जुनून और उपक्रमों को पूरा करना चाहता हूं। मेरा मुख्य जुनून संगीत है। मुझे ऐसे गाने बनाना पसंद है जो लोगों से जुड़े और उनके साथ तालमेल बिठाएं। इसलिए मैं अपनी इस ताकत को लगातार बढ़ा रहा हूं, अपने संगीत को इस ब्रह्मांड में साझा करना जारी रख रहा हूं, चाहे वह टिकटॉक हो, यूट्यूब हो या कोई और माध्यम। मुझे खुशी है कि मैं उन लोगों से जुड़ रहा हूं जो इसे समझते हैं, और दिन के अंत में मैं खुद के प्रति सच्चा रहना चाहता हूं। जैसे मुझे अपनी नौकरी से नफरत थी, मैंने पूर्णकालिक संगीत बनाने और पूर्णकालिक सामग्री निर्माण करने के अवसर के लिए बहुत प्रार्थना की। उस तकनीकी नौकरी को छोड़ दिया जो मेरी आत्मा और जीवन को चूस रही थी। बूम, वह हो गया। और पहले तो मैं असमंजस में पड़ गया, जैसे मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा, मैं अपना गुजारा कैसे चलाऊंगा, मैं कैसे खाऊंगा, बिल कैसे भरूंगा। लेकिन भगवान सब कुछ देता है, भगवान सब कुछ देता है, हाँ देता है। लेकिन मैं इससे उबर रहा हूँ और मुझे इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई चीज मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रही है। रचनात्मक होते रहो और अपने अंदर की आवाज सुनते रहो, क्योंकि तुम कुछ कर सकते हो, तुम इस चीज से लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। मोटरसाइकिल क्यों चल रही है? लेकिन वैसे भी तुम इस चीज से जिंदगी बदल सकते हो, इसलिए मैं पुष्टि के साथ काम करना जारी रखूंगा, इसके लिए नहीं, और सच्चा रहूंगा, अपने जुनून के प्रति सच्चा रहूंगा, अपने दिल की सुनूंगा और देखते हैं कि यह बुरा लड़का हमें कहां ले जाता है। तो मेरे साथ इस सफर पर चलो। मैं चाहता हूं कि तुम उस चीज का पालन करो जो तुम्हें बुला रही है, क्योंकि अगर हम सब वो करें जो हमें पसंद है तो दुनिया एक बेहतर जगह नहीं होगी, यह बहुत बढ़िया होगा। वो करो जो तुम्हें पसंद है, जब चाहो तो राह भी निकल ही आती है, बस भरोसा रखो, मेहनत करो। मुझे पता है कि कभी कभी भरोसा रखना मुश्किल होता है, लेकिन हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। आपको उसकी कल्पना करनी होगी, आपको उन चीजों को नाम देना होगा जो है ही नहीं। मुझे नहीं पता, इसे एक संकेत के तौर पर लो, अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, मिलते हैं अगले मौके पर।
मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं बहुत डरा हुआ हूं क्योंकि मैं 3 महीने से बेरोजगार हूं। मैं बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए योग्य नहीं हूं क्योंकि मैं अभी अभी यहां आया हूं। मैं बहुत तनाव में हूं। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे पास हमेशा से नौकरी थी। मैं एक सम्मानित छात्र था, अपनी क्लास में तीसरा था, हाई स्कूल और कॉलेज में बहुत सफल रहा। मेरे पास पॉलीआई में स्नातक की डिग्री है। मुझे मानसिक स्वास्थ्य में 2 साल का अनुभव है। मैं एक अच्छा कार्यकर्ता हूँ। मैं बहुत व्यवस्थित हूँ, लेकिन कोई मुझे इंटरव्यू तक नहीं देता। और मैं अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए रो रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी क्या होगा अगर मुझे नौकरी ही नहीं मिली। मैं महीनों से आवेदन कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूँगी? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने माता पिता के साथ ही रहूँगी? क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे कहीं भी इंटरव्यू नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं। और मैंने पिछले कुछ महीनों में हजारों नहीं तो सैकड़ों नौकरियों के लिए आवेदन किया है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैं सच में बहुत डरी हुई हूँ। मैं वाकई बहुत डरी हुई हूँ। मुझे नहीं पता कि इस समय दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन मैं एक अच्छी उम्मीदवार हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। क्या मैं अकेली हूँ जो यूनिवर्सिटी से रिफंड चाहती हूँ? कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद से मैं 4 बार बेरोजगार हो चुकी हूँ, क्योंकि जब भी छटनी होती है तो मुझे ही चुना जाता है, और छटनी से पहले हमेशा मुझे एक बेहतरीन समीक्षा मिलती है। मैं एक मेहनती कर्मचारी हूँ। मैं वो सब करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। फिर भी किसी तरह मैं 2017 से अब तक 3 बार बेरोजगार हो चुका हूँ, और अब दोबारा अक्टूबर से मैं दूसरी नौकरी की तलाश में हूँ, और मेरे ऊपर कॉलेज का कर्ज है जिसे मैं चुका भी नहीं सकता। मैं ऐसी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा हूँ जिनके लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे बस पैसे चाहिए। हाँ, कॉलेज जाना मेरा फैसला था, यह एक तरह से मेरा फैसला था, लेकिन उस समय हर कोई यही सोचता था कि नौकरी पाने के लिए कॉलेज जाना जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि हम किसी तरह से फंस गए। कॉर्पोरेट में वापस जाना है, कॉर्पोरेट से बाहर रहना है, बेरोजगार रहना है या स्वरोजगार करना है, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, सोचने के लिए बहुत कुछ है। मैंने आज कुछ चीजें की हैं ताकि आगे बढ़ सकूं और तरक्की कर सकूं और जानकारी जुटा सकूं। इनमें से कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं बस जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं और जानकारी मिलने पर मैं कोई फैसला ले सकूंगा। मैंने कुछ समय पहले एक आर्ट कॉलोनी में डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर पार्ट टाइम जॉब के लिए एप्लीकेशन भेजी थी। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ। देखते हैं कोई जवाब आता है या नहीं। शायद नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें 7 बार ईमेल किया है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने इंस्टाग्राम पर एक डेंटिस्ट को मैसेज किया है जो उस शहर में रहता है जहां मैं शिफ्ट होने जा रहा हूं। वहां का माहौल अच्छा है, और मैंने कहा, क्या आप पार्ट टाइम हेल्प या सोशल मीडिया हेल्प की तलाश में हैं? और जब मैं ईस्ट कोस्ट वापस जाऊंगा तो मैं एक एनिमल शेल्टर में वॉलंटियरिंग करूंगा जहां मैं पहले वॉलंटियर करता था, और उनके टिकटॉक पर भी काम करूंगा। तो ये कुछ अपडेट थे। धोखा, ट्रॉमा। अब मैं हाल ही में रिलेशनशिप के संदर्भ में इसके बारे में सोच रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मुझे हाल ही में पता चला कि एक साल से ज्यादा समय से मेरा बॉयफ्रेंड शादीशुदा था। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस स्टोरी को मेरे पेज पर देख सकते हैं। लेकिन अब जब मैं ऑनलाइन हूँ और इन सभी संघीय कर्मचारियों की कहानी एक के बाद एक देख रहा हूँ, जिन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, उनकी नौकरियाँ जा रही हैं, तो यह वास्तव में हमारी अपनी सरकार द्वारा विश्वासघात का आघात है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, और मुझे लगता है कि लोग वास्तव में इस बात को कम आंक रहे हैं कि इस समय आम अमेरिकियों पर कितना आघात पहुंचाया जा रहा है और इसका आम अमेरिकियों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इन संघीय कर्मचारियों ने ये नौकरियां ली, लोगों के लिए काम करने की शपथ ली, हमारे लिए इन सार्वजनिक भूमिकाओं में सेवा करने के लिए कुछ हद तक सुरक्षा के साथ कि उनके करियर की रक्षा की जाएगी, कि सरकार उनकी रक्षा करेगी, क्योंकि वे लोगों की सेवा करते हैं, जबकि वे मालिकों को ऐसे समय में देते हैं जिनके लिए वे अधिक भुगतान कर सकते हैं। इसलिए विश्वासघात करने वाली संस्था को छीना जाना, और मुझे लगता है कि लोगों को इस तरह के आघात का परिणाम इस देश को बनाना है। तो मैं कल रात एक दोस्त से मिला। वह अभी अभी सिएटल आया था। मैंने उसे कुछ सालों से नहीं देखा था। हम मिल रहे थे और उसने मुझे बताया कि वह बिना किसी नौकरी के नौकरी छोड़ रहा है। उसने आज ही नोटिस दे दिया। यह खबर सुनकर मैं बस उसे पकड़कर हिलाना चाहता था और कहना चाहता था, तुम क्या कर रहे हो, यह मत करो, उद्धरण चिन्ह। क्योंकि एक खबर यह भी है कि हर कोई यह नहीं जानता कि अभी नौकरी का बाजार पूरी तरह से बेकार है, और मैं उसकी स्थिति को पूरी तरह से समझता हूँ। वह अपनी नौकरी से बहुत तंग आ चुका है। वह तकनीक में काम करता है, वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत ज्यादा काम करता है, और मैं उसकी भावना को पूरी तरह से समझता हूँ। मैं पहले भी ऐसी स्थिति से गुजरा हूँ जहाँ मैंने बिना किसी योजना की नौकरी छोड़ दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे वह बहुत नापसंद थी, और मैं पूरी तरह से समझता हूँ। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता था कि अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं और आपको लगता है कि आप नौकरी छोड़ने वाले हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कम से कम अभी इस नौकरी के बाजार में कदम रखने की कोशिश तो करें। आप जानते ही हैं, पहले से ही अपना बायोडेटा अपडेट कर लें, इस प्रक्रिया को शुरू कर दें, आवेदन करना शुरू कर दें। उम्मीद है कि नौकरी छोड़ने से पहले आपको कुछ इंटरव्यू मिल जाएंगे। मैं तो यही सलाह दूंगा कि इस मुकाम पर पहुंचने से पहले चुपचाप नौकरी छोड़ दें। और मुझे पता है कि यह कठिन है, मैं वहां से गुजरा हूं। मुझे नहीं पता कि आप किस स्थिति में हैं, लेकिन मेरे नजरिए से यह जॉब मार्केट बहुत कठिन है। मुझे लगभग 2 साल से नौकरी से निकाला जा रहा है। अगर आप इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे कोई फुल टाइम जॉब नहीं मिल पाई है। तो मैं बस यही कहना चाहता था और उम्मीद करता हूँ कि इससे किसी को मदद मिलेगी। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक को जरूर देखें। यह एक पैट्रियन लिंक है। मेरा मतलब है, हम हर दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे हमारे एक ट्रेडर ने $400 में एक गूगल कॉल खरीदा और आखिरकार उसे $490 में बेच दिया। हर कॉन्ट्रैक्ट पर लगभग $100 का मुनाफा हुआ, और हमारे एक ट्रेडर ने बस कुछ अलग अलग ट्रेड से बहुत पैसा कमाया। मेरा मतलब है कि यहाँ 33% का मुनाफा हुआ। हमने $252 को $400 से ज्यादा में बदल दिया। और इन सभी ट्रेडों को देखें, ये सभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका हम रॉबिनहुड पर व्यापार कर रहे हैं, और हम सभी वास्तव में कुछ बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। मैं भी इन ट्रेडों का पालन करता हूं क्योंकि वे वास्तव में अच्छे हैं। आपके पास एक कांग्रेस ट्रैकर भी है जो ये ट्रैक करता है कि बहुत से राजनेता क्या खरीद रहे हैं, और असामान्य स्टॉक डेटा विकल्प भी। आपके पास समाप्ति प्रीमियम है, और आप कभी कभी यह पता लगा लेते हैं कि इन सभी बड़ी गतिविधि ब्रेकआउट, असामान्य स्टॉक सिग्नल और बहुत कुछ के कारण अंदरूनी सूत्र क्या कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि आपको वास्तव में हजारों डॉलर के सिग्नल और व्यापारी केवल $10 प्रति माह की कीमत पर मिल रहे हैं, और सीमित संख्या में स्पॉट बचे हैं। 7 दिन का निःशुल्क परीक्षण भी। इसे देखें, हम इस पर बहुत समय बिताते हैं।